ये महाराष्ट्र आया है, अकोला, अमरावती, और भी कोई है? अकोला और अमरावती के ही सारे ये फूल आए हैं। बाबा के बगीचे में और खुशबू भरने भी आए हैं और खुशबू लेने भी आए हैं। फूल है ना बाबा के, कहाँ कहाँ जाके खिले और अब अपने वतन पहुंच गए। ये आबू अब्बा का वतन, यहाँ की भीनी सुगंध, यहाँ के वाइब्रेशन ने आते ही आपका स्वागत किया होगा। रास्ते की गर्मी से तो यहाँ ठंडक बेटर है, फिर भी ठंडी हवाएं बाबा के प्यार की किरणों के साथ साथ कितना सुकून देती है। हमें पता चला कि आप सब तो दो दिन पहले ही आ गए, बहुत होशियार हैं। ऐसे होना चाहिए कि जितना संगम युग पे लूट सको लूट लो। अच्छा, अभी पहले वाला ग्रुप गया भी नहीं था पूरा, तो आप सब पधारे हो। भट्टी का ऑफिशियल उद्घाटन तो कल होने वाला है, लेकिन क्योंकि आप सभी आ चुके हैं तो इसलिए एडवांस सेशन रखा है। और एडवांस सेशन में ही आप सबकी एक लकी लॉटरी निकली है। आज सूर्य भाई का अपने आप फोन आया कि मेरे पास टाइम है, अगर आप चाहे तो मेरा क्लास रख सकते हैं। तो अभी रात्रि क्लास 8:30 से आप सबको सूर्य भाई का ही मिलने वाला है। तो भट्टी की शुरुआत में ही आप सबकी मनोभूमिका अच्छी तैयार हो जाएगी और ये भट्टी कुछ अच्छा रंग दिखाएगी। क्योंकि भट्टी माने क्या होता है, जिसमें जो डले बदल के आए। तेज आ गए ना भट्टी, तेज भी है और बदलने की ताकत भी रखती है। ईंटे डालो भट्टी में तो कच्ची से पकी होके आ जाती है, सोना डालो भट्टी में तो गल जाता है, मैल निकल जाता है, साफ हो जाता है। लोहा डालो भट्टी में मोल्ड हो जाता है। तो मोल्डिंग कैपेसिटी है, चेंजिंग कैपेसिटी है। तो हम सब भी बाबा के विशेष रतन है, बहुत धूले मंजे हैं ज्ञान योग से, लेकिन सबका कुछ कुछ काम बाकी है। तो आज के वरदान में ही बाबा ने कहा, समीपता द्वारा समानता और संपन्नता के साथ वरदानी मूर्त बन सकते हैं। तो वरदानी मूर्त बनने का अगर पार्ट बजाना है तो बाप के समीप समान और संपन्न बनना होगा। तो ये भट्टी हमारी जो कसर रह गई है पुरुषार्थ में कोई भी तरह की, उसको पूरा करने के लिए काम करेगी। कोई भी पुराना संस्कार किसी भी कोने में किसी भी रूप में रखा रह गया हो, चाहे पॉकेट मनी के रूप में रखा हो कि चलो बाकी सब तो ठीक है, पर थोड़ा गुस्सा कभी तो करना पड़ता है ना। तो ये पॉकेट मनी है कि कभी कोई ऐसा ही ज्यादा ही तंग करे और फिर शांति से नहीं माने तो, बच्चे बहुत परेशान करे तो, कभी तो आंख दिखानी पड़ेगी। तो थोड़ा कोई कोई पुराना संस्कार, बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे जेब खर्च के रूप में रख लेते हैं, उसको बचा के अलग रखते हैं और समझते हैं कि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इस भट्टी में जो जेब खर्च के रूप में कोई भी चीज रखी थी ना, उसको भी स्वाहा कर देंगे। जब दान करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा उस दान का महत्व होता है जो अपनी निजी जरूरत की चीज भी त्याग देवे, निजी जरूरत की चीज भी, तो सबसे बड़ा दान माना जाता है। बहुत ज्यादा फिर दिया तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो बहुत सारी कमियां तो हम दे चुके बाबा को, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी और एसेंशियल समझ के रखी हुई है ना, अब उनको स्वाहा करना है, उनको खत्म करना है, उसका महत्व सबसे ज्यादा होगा। तो हम सभी भट्टी में ये लक्ष्य रखें कि अब यहाँ से निकलेंगे तो सब इतने सारे लोगों को भ्रम पड़ जाए कि ये भगवान है कि भगवान के बच्चे हैं, बाप समान इतने तेजोमय स्वरूप वाले, हम जहाँ जिसको देखे दिल से दुआ निकल जाए और उसको लग जाए। वरदानी मूर्त का यही अर्थ है ना कि जिस पर हमारी आंख पड़ जाए उसके लिए दुआ निकले और वो उसके लिए काम करे तो कहेंगे वरदान मिल गया। वही वरदान होता है ना, सिर्फ ऐसा वाला तो वरदान नहीं होता, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, तेरी मनोकामना पूरी हो जाए, नहीं, हर एक के लिए गुड विशेस, हर एक के लिए दुआएं, हर एक का भला हो, इसकी डीप डिजायर, दिल के अंदर तक ये इच्छा होनी चाहिए कि ये सामने वाला सुखी हो जाए, मेरे से भी आगे चला जाए, इसका काम बन जाए। तो इतने सी गुड विशेस में सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, जेलसी, हेट, कंपैरिजन, कंपटीशन, क्योंकि दिल करेगा इसको सुख मिले ना तो जेलसी किस बात की, फिर हेट भी नहीं रहती, इसको सुख मिले ना इसका भला हो जाए ना, फिर कंपैरिजन किस बात का कि इसको मेरे से आगे जाना चाहिए ना, कंपटीशन का तो फिर सवाल ही नहीं। तो बहुत सी छोटी छोटी कमी कमजोरी सब अपने आप खत्म हो जाती है अगर हम गुड विशेस को प्रयोग करते हैं, सिंपली जिसको कहेंगे दुआएं देना, जिसको भी आंख देखे, जिसको भी देखे दुआ दे दे। तो यहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे दुआएं देने के लिए, आत्मा देखने की। अभी भी हम सामने आके बैठी तो पहले तो सबके सिर सिर दिखाई दिए, इतने सारे इकट्ठे, तो हमने सोचा ये सब शालिग्राम है, सिर यहाँ से तो ऐसे सिरों जैसा ही दिखाई देता है, फेस तो आगे वालों के दिखाई देते, तो शालिग्रामों के बीच में स्टार चमक रहा है, सब शालिग्राम है और मैं सब शालिग्रामों का इकट्ठा अभिषेक कर रही हूँ। अभिषेक करने में वो लोग तो या तो तिलक छिड़कते हैं या जल छिड़कते हैं, तो शालिग्राम की पूजा हो जाती है। शिवलिंग पे तो बहुत कुछ चढ़ाते हैं, शालिग्राम पे तो जल चढ़ाए तो काम पूरा हो जाता है। तो शुभ भावनाओं का, बाबा के प्यार की किरणों का, ये सामने वाला आत्मा भाई है, बहुत मीठा भाई है, बाबा का बच्चा है, बहुत अच्छा है, बस ये भावना हर एक के लिए रहे, भावना भी रहे और वैसी दृष्टि भी, बार बार अंदर की आंख को प्रैक्टिस कराएं, ये सामने वाला हड्डी मांस कवर है, डिब्बा बस बॉक्स है, इसके अंदर स्टार 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 स्टार, अब इतने सारे स्टार पूरा दिन में देखने हैं तो उसके लिए बहुत साइलेंस चाहिए, एकदम चुप हो जाना पड़ेगा। अब जब आते हैं ना लौकिक प्रवृत्ति से तो मुंह को प्रैक्टिस हुई हुई है, वो बहुत टाइम कारोबार की बात बोलता है, बहुत टाइम खाने की, पहनने की, जर्नी की, रिलेशन की, लेने की, देने की, न्यूज की, पॉलिटिक्स क्या हो गया, रेल में क्या हो गया, ये वो सो, फिर रूम कौन सा मिला, फिर अच्छा मिला, छोटा मिला, बड़ा मिला, या भोजन कैसा मिला, है ना, ये सब जो भी है स्थूल है ना, जो कुछ भी है स्थूल है, कर लिया होगा कल से आज तक, थोड़ा घूम घाम के आए होंगे, कुछ ही कर लिया होगा। अब इस सारे को एकदम कंप्लीट फुल स्टॉप लगा देना, सेटिंग हो गई सबकी, क्या रूम मिलना था, भोजन कहाँ खाने जाना है, कितने बजे खाना है, यहाँ कैसी व्यवस्था है, एक दिन में सब सेटिंग हो जाती है। अब मुंह को बोलना कि तुझे चार दिन ये बंद या चेन बंद, क्योंकि अब साइलेंस की प्रैक्टिस करनी है। तो साइलेंस तब ऑब्जर्व करते, ठीक सोल कॉन्शियस तब होते है, सामने वाला स्टार ठीक से तब देख पाते है जब ये चुप होते ही यहाँ थॉट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि आधी से ज्यादा बात तो मन वो वाली सोचता जो बोलने की होती है कि सामने आ रही है बहन, ये नजदीक आएगी, इसको ये बात बोलती हूँ। बोलनी है 4 लाइन और मन बोलेगा 20 लाइन। जब तक वो नजदीक आएगी बहन, ये 20 लाइन बोल चुका, क्योंकि मन तो बहुत फास्ट है ना, वर्ड स्लो होते हैं, माइंड फास्ट होता है, तो 20 लाइन बोल देगा तब तक। और अगर वो सामने वाली बहन आ रही है और मुझे बोलना ही कुछ नहीं है, नो साइलेंस, तो ये भी चुप हो जाएगा। जितना बोलना होता है उससे ज्यादा थॉट चलता है। तो अब जब हम मुंह को ऑर्डर करेंगे ना, चुप नहीं बोलना है। ऐसे नहीं कि काम का और जरूरी बोल लेना, या कुछ बोलने का काम ही नहीं है आपको, तपस्या करनी है, खाना पकाना नहीं है, ऑफिस जाना नहीं है, मार्केट से कुछ खरीदना नहीं है, घूमने भी 3 दिन जाना नहीं है, उसके बाद लास्ट डे पे किसी को घूमना करना कुछ बाकी हो तो टीचर्स बहने दीदियां आपका प्रोग्राम बना देंगी, उसके लिए आपको भी कुछ प्लान करना नहीं है, करके टीचर्स के पास कुछ सेवा का पार्ट होता है, उनको बोलना पड़ता है, तो कॉपी नहीं करना। अगर दीदी बुला रही है फलाने सेंटर के भाई बहने, आओ आ जाओ, चुप आओ, बोलना नहीं, बिना बोले आ सकते, दीदी को बोलना पड़ेगा, उन्होंने बुलाना भी है, कुछ कुछ प्रोग्राम भी देना, ये बात ऐसे, ये बात ऐसे, तो दीदियों को बोलना पड़ेगा। आपको कोई बात आंसर करने के लिए दीदी बोले तो लिख के दो, या फिर बाप दादा की आवाज में बोलना, दीदी ऐसे है। बस पूरे पांडव भवन में मूल वतन बन जाए, सूक्ष्म वतन बन जाए, सब कहें कमाल है, ये जो आए थे ना अकोला और अमरावती वाले, ये तो कमाल कर गए, सारे पांडव भवन को सूक्ष्म वतन बना गए, ऐसे लगा जैसे कोई यहाँ आया ही नहीं है। ऐसी फीलिंग आनी चाहिए जैसे फरिश्ते घूम रहे थे सभी, है ना, होगा ना ऐसे, तो मौन, ताकि हम अपना बेसिक अभ्यास कर सकें बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए। क्योंकि बाप समान बनने के लिए बहुत जरूरी है निराकारी स्थिति, बाप निराकार है, देह लेता नहीं है, लेता भी है तो आता चला जाता है, न्यारा होके लेता है, आके बोलता भी है तो सूक्ष्म आवाज में बोलता है, स्थूल आवाज भी बाबा का नहीं निकलता, और जितना बोलना होता है उतना बोल के फिर चुप होके सिर्फ दृष्टि देता है, देखा हुआ ना अव्यक्त बाप दादा कैसे आते है। तो हमको भी किसी को भी सिर्फ तब बोलना है जब माइक आगे मिले, उससे पहले नहीं बोलना। बाबा भी देखो निराकार है ना, देह में प्रवेश करता है, आगे माइक लगता है तब बोलता है, वैसे तो नहीं बोलता है बाबा। तो निराकारी अवस्था साइलेंस की अवस्था है। साइलेंस मीन्स मन में विचार भी कम से कम हो और अनुभूति अधिक से अधिक हो। जितना गहन शांति की अनुभूति होगी, गहन शांत स्वीट साइलेंस, बोर वाली नींद वाली शांति नहीं, थकावट वाली शांति नहीं, एस्केपिज्म वाली शांति नहीं, शांति माना एकदम स्वीट कंटेंटमेंट, जैसे पा लिया, मिल गया, हो गया, कर लिया, ले लिया, दैट्स ऑल, ऐसे वाली फीलिंग कि हो गया, डन, बस ज्योति सितारा अपने को देख रहा है। तो जितना डीप साइलेंस में जाएंगे, फॉर इयर्स क्रोध को खत्म करने का जो मेहनत है वो समाप्त हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्रोध के साथ हमारी जीत हो जाएगी ऑटोमेटिक, डीप साइलेंस। तो एक तरफ क्रोध आजकल बहुत हावी होता है सबके ऊपर, बाबा कहते हैं काम से क्रोध भी तीखा है, कम नहीं है, ने नाम बदनाम कराता है बाबा का, काम विकार तो गुप्त होता है, दिखाई भी नहीं पड़ता है, और उसके नाम पर तो लोग हमको कहते हैं कि इन्होंने घर बार छुड़ा दिया, लोग तो उसको अच्छा मानते, लेकिन क्रोध को दुनिया भी बुरा मानती है। हम पवित्र रहे पर क्रोध करे तो बाबा का नाम बदनाम होता है। तो ये दृढ़ संकल्प करना कि भट्टी मुझे शांति दूत बना देवे, मैं शांति का अवतार बन जाऊं, ऐसी डीप साइलेंस जो बोलना चाहूं बोला न जाए, इतना सोल कॉन्शियस गहरा साइलेंस जो अंदर से क्रोध को मारने की मेहनत क्या होती है वो भी नहीं होवे, इतनी शांति उभर के आ गई ऊपर जो क्रोध कहाँ चला गया मालूम ही नहीं पड़ा। तो इस साइलेंस में गुड विशेस है और गुड विशेस क्रोध को एंटीडॉट करती है, समाप्त कर देती है। पवित्रता इतनी बढ़ जाए सोल कॉन्शियसनेस से कि काम के छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, नाम रूप फेमिलियरिटी अट्रैक्शन चला जाए, मेटेरियलिज्म का अट्रैक्शन, ये पहनूं, ये दिखाऊं, ये सजावट करूं, ये थोड़ा उससे बात करूं, जितना सोल कॉन्शियस होंगे ना अंदर की पवित्रता ऐसे वॉल्केनो की तरह फुट करके आएगी, ज्वालामुखी जैसे फुटता है तो सब चीज अंदर की बाहर आ जाती है। तो ऐसे मैं अपने आत्मिक पवित्र स्वरूप को जागृत करने के लिए आत्मा 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 की प्रैक्टिस करूं। आत्मा भाई है, आत्मा भाई है, आत्मा भाई है, बहन भाई भी नहीं है इसमें, भाई भाई, ये प्रैक्टिस अच्छी वाली करनी है जो पांचों विकारों की एकदम जड़ है, ये खत्म करने की सोल कॉन्शियसनेस। मैं हूँ आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, तो इससे काम भी गया, क्रोध भी गया और लोभ समाप्त हो जाए। उसके लिए हम ये शब्द नहीं यूज करेंगे कि आज के बाद मैंने लोभ छोड़ा, नहीं, उसके लिए संतुष्टता का गुण बार बार याद करेंगे। मैं संतुष्ट मणि हूँ, मैं संतुष्ट मणि के साथ साथ मुझे अनासक्ति है, वैराग्य, इतना सब कुछ मिल गया कि दुनिया का कुछ चाहिए नहीं, बाबा मिला, सब कुछ मिला। तो प्राप्तियों को याद करते हैं तो लोभ वृत्ति समाप्त होके एक नेचुरल खूबसूरत सा वैराग पैदा होता है, एक स्वाभाविक त्याग वृत्ति अंदर से जन्मती है। तो ये सोल कॉन्शियसनेस से होता है, मैं आत्मा तो हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, संतुष्ट मणि हूँ, मैं वो आत्मा हूँ जिसके अंदर सब खजाने भरे, जो भगवान समान है, भगवान समान सब खजानों की मालिक, तो मुझे दुनिया का कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ दाता रूप हूँ, देने वाली हूँ। तो जितना आत्मिक भाव में होंगे, काम गया, क्रोध गया, लोभ गया, और उतना मोह भी समाप्त होता जाएगा। मोह में क्या होता है, दो चार मेरा मेरा बाकी पर आया, और मोह के अगेंस्ट जो बाबा हमको गुण यहाँ देते हैं आत्मिक स्मृतियों से, वो गुण मोह के अगेंस्ट होता है डिटैचमेंट, न्यारापन। तो आत्मा आत्मा जैसे देखते हैं तो अपने आप बेहद का प्यार उत्पन्न होकर के न्यारापन पैदा होता है। प्यार छोड़ के न्यारापन नहीं है, ऐसे वैरागी नहीं कि सब गैर लगते हैं, नहीं, इसमें ट्रू लव पैदा होता है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप जो ठीक प्रकट हुआ ना आत्मा का, तो मोह मर जाता है। बिना प्रेम स्वरूप वाला सन्यासियों वाला वैराग कोई सच्चे मायने में मोह को नष्ट नहीं करता, इसलिए उनको मोह छोड़ने के लिए घर छोड़ना पड़ता है, दुनिया छोड़नी पड़ती है, संबंध सारे छोड़ने पड़ते हैं, आंखों से देखे नहीं, उनके साथ रहे नहीं, व्यवहार नहीं करे तो उनका मोह नष्ट होता है। कईयों का तो भी नहीं होता है, जंगल जाके भी संबंधियों की याद आएगी तो वापस लौट आते हैं, पर यहाँ बाबा कहते हैं संबंधियों को छोड़ना नहीं, उनके काम भी सब करने हैं, बाल बच्चे भी पालने हैं, लेकिन कैसे ये मोह नष्ट होता है, आत्मा के अंदर से पवित्र प्रेम की धारा प्रकट होती है। प्रेम के सागर की संतान हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, तो सब मेरे हैं। अगर बेहद का मेरापन है तो हद का मेरापन अपने आप उसके अंदर डाइल्यूट हो जाता है। परिवार हम लोगों ने छोड़े नहीं, बड़े किए। जैसे हम बहनों से भी कोई बोले कि बहन जी आपने दुनिया छोड़ दी, हम कहेंगे नहीं छोड़ी नहीं, घर छोड़ा। अभी घर तो नहीं आप लोग जा सकते होंगे, मम्मी डैडी से मिल सकते हैं। हम कहते बिल्कुल मिल सकते हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं तो उनसे मिलने में क्या पाप हो जाएगा। हमने दुनिया नहीं छोड़ी है, लेकिन दुनिया से प्यार बढ़ा दिया तो मोह छूट गया। तो बाकी लोगों को देखे, लौकिक संबंधियों को देखे, हमको एक समान लगते हैं। जितना हमारे को प्यार लौकिक संबंध के लिए था, केयर थी उनके लिए, फीलिंग थी कि इनको दुख नहीं होना चाहिए, अभी वो फीलिंग हमको सबके लिए आती है। ये सब अपने, सबको दुख नहीं होना चाहिए, सबके लिए कंसर्न्ड फीलिंग, सबके लिए अवेलेबल, सबके लिए गुड विशेस। तो हमने मोह छोड़ने के लिए मोह बड़ा कर दिया, तो विकार से गुण हो गया। जब लिमिटेड था 2, 4, 8, 10 लोगों से तो वो विकार था, अभी सारे संसार से है तो वो विकार के बजाय सद्गुण हो गया, सागर हो गया ना। मोह का सागर नहीं होता है, प्रेम का सागर होता है। तो ये जितना आत्मिक स्वरूप में हम स्थित रहेंगे, अंदर से रूहानी प्रेम उत्पन्न होगा, ईश्वरीय प्यार के सागर में हम डूबते हैं। जितना लगता है बाबा मुझे प्यार करता है, बाबा मुझे याद करता है, बाबा मुझे देखता है, बाबा मुझसे मिलने आता है, बाबा मुझसे मिलना चाहता है, बाबा बार बार मेरे सामने आ जाता है, चल बच्चे तेरे साथ चलूं, चल तुझे खिलाऊं, चल तुझे सुलाऊं, बाबा मेरे आगे पीछे घूमता है। तो जितना बाबा का प्यार फील होगा ना, तो देहधारियों के प्यार की भूख खत्म हो जाएगी। अरे कितना प्राउड है इसमें, कितना बड़ा स्वमान है कि भगवान मुझे याद करता है, मुझे ढूंढा उसने, मुझसे मिलना चाहता है और मुझे पावन बना के पलकों पे बिठा के साथ ले जाना चाहता है। आज भी कहा ना कैसे ले जाऊंगा, वो कहते कृष्ण का बाप टोकरी में ले गया, तो बाबा कहते हैं तुम शाम बन गए हो, तुमको टोकरी में ले जाता हूँ। कौन सी टोकरी है, नैनों पे बिठा के ले जाता हूँ, पलकों पे बिठा के ले जाता है। तो इतने प्यार की भाषा बोलता है तो कितना प्यारा लगता है। तो ये ईश्वरीय प्यार बढ़ाने से मोह घटता है। तो ये काम गया आत्मिक स्मृति से, क्रोध गया, लोभ गया, मोह गया, और अभिमान तो है ही सोल कॉन्शियसनेस का एक एंटी एनर्जी। जितना हम सोल कॉन्शियस होते विनम्रता आती है, हम निर्माण बनते है, सब कर्म निमित्त भाव से करते है, तो निमित्तपन और निर्माणता अहंकार को नष्ट करता है। अहंकार कहता है मैंने किया, और निर्माण भाव कहता है बाबा ने कराया, मैंने नहीं किया। निर्माण भाव स्वाभाविक रूप से अंदर उत्पन्न होने से स्वाभाविक रूप से अहंकार सबलाइम होने लगता है, जैसे सॉफ्ट होने लगता है, हड्डियां नरम हो जाती जिसको बाबा कहते हैं, नहीं तो हड्डियां सख्त है। तो अभिमान होता है तो हम रिजिड होते हैं, ऐसा ही चाहिए, तुम ऐसा ही बोलो, ऐसा ही करो, अगर तुमने वैसा नहीं किया तो हम तुमसे बोलेंगे नहीं वगैरह, उसके हम रिएक्शंस दिखाते हैं। लेकिन विनम्रता वाला दूसरे के लिए जिद, रिजिडिटी नहीं, उसके बजाय सॉफ्टन हो जाता है। सॉफ्ट होके क्या समझता है, चलो इस आत्मा का जो पार्ट है ये अपनी जगह ठीक है, मुझे अपना पार्ट ठीक बजाना है। निर्माण हो जाएंगे, और जो अच्छे अच्छे कर्म करेंगे ना, अच्छे करते हैं तो उसका भी बहुत अभिमान आने का चांस होता है। इवन अच्छा योग लगाया तो भी उसका अभिमान आने का चांस होता है, मैं देख रही हूँ मैं तो बाबा के प्यार में मगन हूँ, बोलने का भी दिल नहीं कर रहा है, और ये सब एक दूसरे को देखे बोले जा रहे है, तो अभिमान आने का चांस है कि इनको तो योग लगाना ही नहीं आता और मेरे को तो वाह भाई वाह बाबा इतने अच्छे अनुभव कराता है, इसका भी अभिमान आ सकता है। लेकिन जो रियल सोल कॉन्शियसनेस है उसमें इस तरह की रिजिडिटी नहीं होती है। नहीं, मैंने योग लगाया वो भी नहीं, बाबा ने मुझ पर कृपा की जो मेरी रस्सी खींच ली, बाबा इन सब की भी खींचो। ये नहीं लगेगा ये लोअर है, ये और टाइम पर अच्छा करते होंगे। हाँ, हो सकता है ये जो बातें कर रहे हैं ना, बातें करने वालों का बैलेंस ज्यादा अच्छा हो, कि ये बात करते भी बाबा को इतना याद कर लेते हैं और मुझे याद करने के लिए चुप होना पड़ता, तब राइट अंडरस्टैंडिंग जागृत होती है कि मैंने जो भी किया कोई बड़े तीर नहीं मारे, अभी बहुत काम बाकी है, वो दिखाई पड़ता रहेगा। तो सोल कॉन्शियसनेस हमारी अंडरस्टैंडिंग को रियलिस्टिक करती है। तो जो रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है, राइट जजमेंट, वो अभिमान पैदा नहीं होने देती, अदरवाइज जजमेंट रॉन्ग चली जाती है। और जहां हमारी जजमेंट रॉन्ग जाती है वहां अभिमान भी आता है, और अभिमान के कारण से बहुतों को दुख देने का पार्ट चलता है, दुख लेने का भी पार्ट चलता है। तो अभिमान का सबसे बड़ा साइन है, इफ इट हर्ट्स इट इज ईगो। अभिमान वाला हर्ट करेगा भी जरूर, दुख देगा भी जरूर, दुख लेगा भी जरूर। ये तो मुझे पूछते ही नहीं, मैं इतनी अच्छी हूं तो भी मुझे पूछते नहीं है, ये अभिमान। मेरी भी मानो, मेरी सुनो, मैं ठीक बोलती हूँ, मुझे ज्यादा मालूम है, ये अभिमान, अभिमान वाला अड़ता है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग जहाँ आएगी ना, वहां हम रिजिड नहीं होंगे। राइट अंडरस्टैंडिंग वाला ना हर्ट होगा, मेरी बात सामने वाले मान रहे हैं तो भी खुश, एक भी मेरी बात नहीं मान रहा है और मैं अगर विनम्रता वाली हूँ तो भी खुश, हर हाल में खुश। जो ईगोलेस होगा ना, सॉफ्ट है, विनम्र है, निर्माण है, तो उसका साइन है कि वो कभी भी दुख रिसीव नहीं करेगा, हर्ट नहीं होगा, और उसके द्वारा दूसरे को दुख दिया भी नहीं जाएगा। दूसरे की बात जल्दी मान लेगा, एक ने कही दूसरे ने मानी, समझो दोनों महाज्ञानी। सबसे बड़ा ज्ञान है आत्माभिमान, आत्माभिमानी ही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। इसलिए इस भट्टी में ऐसा रहना है कि ये देहभान का चमड़ा पूरा ही उतर जाए, चमड़ा लगा रहता ना, चिपका हुआ है, 84 जन्म हो गए ये चिपका ही हुआ है, अकेली आत्मा हुई नहीं है चार युगों में कभी। जब एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है आत्मा, तब भी अकेली नहीं होती है। जैसे ही एक शरीर छोड़ के आत्मा निकलती है, पिछले शरीर के साइज और शेप जैसा लाइट का आकार उसके साथ रहता है, तो पूरे 84 जन्म अकेला ज्योति बिंदु हुआ ही नहीं है, तो देह चिपक गई है हमको। अब संगम युग पर बाबा ने आके अकेला सितारा बनने की हमको प्रैक्टिस बताई, कि तुम नंगे आए थे, ये शरीर कपड़ा है, अब फिर से बुद्धि से इसको उतार दो, बार बार अकेला सितारा हो जाओ बार बार। तो ये चमड़ा और मैं दो है, दो अलग शक्तियां महसूस होनी चाहिए, दो टुकड़ा अलग, टू एंटिटीज। यहां तक लगे कि इससे जैसे बात करते, ये सेकंड पर्सन है, ये अलग चीज है, मैं तो यहां बैठी हूं, ऐसी फीलिंग बार बार लेनी है कि मैं और तुम दो है, एक भी न लगे। मेरा शरीर भी सिर्फ नहीं, पीछे एक संडे की अव्यक्त मुरली आई थी जिसमें बाबा ने देह से अलग होने की बहुत सुंदर प्रैक्टिस बताई थी। समझो बीमारी आई तो ये ना कहो मैं बीमार हूं, ये भी नहीं मेरा शरीर बीमार है, नहीं बाबा आपकी अमानत बीमार है, बाबा की अमानत है, मेरा नहीं है ये शरीर भी, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मेरा शरीर भी नहीं है, बाबा की अमानत है, बाबा की अमानत में मैंने प्रवेश किया है थोड़ी देर के लिए इसे यूज करने के लिए। तो दो टुकड़ा अलग फील होना चाहिए। मनोहर दादी इस पर बहुत बढ़िया बात सुनाया करते थे। तो वो कहते, शुरू शुरू बाबा ने हमको देह से न्यारा होने की, आत्मा हूँ इसकी बहुत प्रैक्टिस कराई, बहुत ज्यादा। तो हैदराबाद सिंध में कहते हमको इतनी आत्मा 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 समझने की प्रैक्टिस हो गई थी कि समझो कोई भी दो आमने सामने आए तो जैसे ही नजर मिलेगी कुछ सेकंड रुक जाएंगे। ये निज आत्मन है, मेरा मीठा भाई है, मैं आत्मा हूँ। कहते कभी कभी तो ऐसा होता था, समझो दो बहनें आंगन में झाड़ू लगा रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। झाड़ू लगाते तो सिर नीचे होता है ना, तो सिर नीचे भी करते थोड़ा ऊपर भी करते। कहते जैसे ही वो दोनों ने झाड़ू लगाते सिर ऊपर किया तो एक दूसरे को देखा तो देखने लगे, आत्मा आत्मा भाई भाई परम धाम से आए सितारे। इतने में झाड़ू छूट गया, आंखें बंद हो गई, ट्रांस में चली गई, दोनों रास करने लगी और ट्रांस से नीचे उतरी फिर झाड़ू लगाने लगी। कहते ऐसे सीन रोज रोज होते थे, इतना आत्मा आत्मा देखने की प्रैक्टिस करते थे, ओम शांति भी नहीं बोलते थे, बस देखते ही ऐसे रुक जाते थे, आत्मा भाई है। कहते एक बार एक बहन बाथरूम में स्नान कर रही थी, दूसरी बहन ने जाके खटखट किया, बहन कब निकलोगी कब निकलोगी। अंदर वाली ने उत्तर दिया, बहन जब शरीर छूटेगा, क्योंकि जो अंदर में स्नान कर रही है वो तो प्रैक्टिस कर रही है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर रथ है, इस रथ को मैं पानी से साफ कर रही हूँ। और बाहर से आवाज आ गई, बहन कब निकलोगी, तो कब निकलोगी, तो उसको लगा आत्मा शरीर से कब निकलोगी, कहती जब छूटेगा तभी तो निकलूंगी, ऐसे कैसे निकलूं। तो इतना आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस किया करते थे। तो मनोहर दादी कहते आबू में आने के बाद हम दिल्ली में गए सेवा पर, और सेवा केंद्र पहला खुला तो कुछ बड़ी बहने ही थी वहाँ, दादियाँ, एक ही कमरा, दो कमरे का सेंटर था, एक कमरे में सब बड़ी बहने थी और दूसरे कमरे में कोर्स वोर्स कराया करते थे। तो मनोहर दादी कहते एक कोर्स वाला भाई आया और दादी कोर्स कराने के लिए गई, उसको पहला लेसन कराया, तो महात्मा हो शरीर नहीं हो मन बुद्धि संस्कार वगैरह, और उसके बाद दादी ने कमेंट्री कराई, उसको पूछा क्या अनुभव हुआ, कहते ठीक है क्या समझ आया, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, बाकी उसने और कोई अनुभव आत्मा का नहीं सुनाया। तो अंदर जाके बाकी दादियों ने पूछा भाई ने कैसा समझा, समझ आया उसको पहला लेसन, तो मनोहर दादी कहते मैंने उनको बोला नहीं उस भाई को कुछ भी समझ नहीं है, जब तक आत्मा का अनुभव नहीं सुनाए देह से न्यारा नहीं हो जाए तो हमें लगता था कि इसने कुछ समझा ही नहीं है। फिर वो भाई दूसरे दिन आया, दूसरे दिन कहते फिर आत्मा का थोड़ा और बता करके फिर कमेंट्री कराई, तो जैसे ही कमेंट्री कराई वैसे ही वो ध्यान में चला गया। तो जैसे ही वो ध्यान में गया तो मनोहर दादी कहते मैं बहुत खुश हो गई और अंदर उठ करके अंदर चली गई बहनों के पास और बाकी दादियों को बोलने लगी, दादी दादी आज वो दो टुकड़ा हो गया, कल नहीं हुआ था, आज दो टुकड़े हो गए उसके शरीर और आत्मा, उसको अलग अनुभव होने लगा, तभी तो वो एकदम ट्रांस में चला गया। तो दो टुकड़ा लगातार अलग फील होता रहे, ये टुकड़ा अलग ये टुकड़ा अलग, यानी दो सत्ता है, दो हस्तियां है, ये और मैं एक नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है, ये नौकर है मैं राजा हूँ, ये रथ है मैं रथवान हूँ, ये गुफा है मैं इसके अंदर दीपक हूँ, ये मंदिर है मैं इसके अंदर मूर्ति हूँ, तो मैं इसका ट्रस्टी हूँ, इसका श्रृंगार करने वाला, और ये मूर्ति है इसको सजा रही हूँ मैं आत्मा, तो अलग अलग कार है, मैं ड्राइवर हूँ, तो दो दो हो गए ना, दो फील होना चाहिए। यहाँ कुछ लगा दर्द हुआ तो ये ना लगे मुझे दर्द हुआ, नहीं इसको दर्द हुआ, ये अलग है, ये इस शरीर का अंग है, एक नौकर है, ये इस शरीर का हिस्सा है, मैं नहीं हूँ। मुझे दर्द हो रहा नहीं, मेरे हाथ को दर्द हो रहा नहीं, शरीर के हाथ को दर्द हो रहा, शरीर अलग चीज है। तो बहुत सूक्ष्म पकड़ चाहिए इसके लिए, देह से न्यारा होने के लिए। जो लौकिक कारोबार में रहते हैं तो नहीं कर सकते है, क्योंकि थोड़ा टाइम बाबा के घर आए फिर कारोबार में जाना पड़ता है, थोड़ी देर बैठे एकाग्र होके फिर काम करना पड़ता है, यहाँ तो भट्टी में पड़ गए। बेशक बीच बीच में आपकी क्लासेस होंगी, बहुत क्लासेस होंगी, लेकिन सुनते समय ये वाली प्रैक्टिस सबसे अच्छी हो सकती है कि सामने आत्मा मुख द्वारा बोल रही है, लगातार जो भी आए ना क्लास कराने उसके यहाँ देखते रहो, ये नोट करना चार्ट, कितना देर देख पाए, और फिर अपने लिए फील करो मैं सितारा कानों से सुन रहा हूँ, ये दो होल है, सुराख है, इससे आवाज यहाँ टकरा रही है, मुझे सुनाई दे रही है, मैं यहाँ बैठा हूँ और ये कानों से आवाज आके यहाँ मुझे सुनाई दे रही है, मैं सितारा सुन रहा हूँ, ये सितारा बोल रहा है, मैं भी पवित्र हूँ शांत हूँ, ये भी सितारा पवित्र है शांत है। तो ये प्रैक्टिस हम यहाँ सबसे अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि वायुमंडल का सहयोग है, ज्ञान का भी सहयोग है, लगातार ज्ञान सुनने को मिलेगा कानों को, तो सारा ज्ञान ही अपना इसी बात पर आधारित है, आत्मा समझ परमात्मा को याद कर, देह को भूल, देह के संबंधों को भूल, बेसिक तो यही है ना। इसी बात को पक्का करने के लिए इतना विस्तार ज्ञान का किया जाता है, तो इसलिए इस बेसिक अभ्यास को हम यहाँ पर मिस न करें, वहां जाके उतना अच्छी तरह कब नहीं कर पाएंगे, यहाँ सिमट गए सब, कारोबार से छुट्टी लेके आए, कोई कोई तो बहुत मुश्किल से छुट्टी लेके आए होंगे, कोई घर से लड़ाई भी करके आए होंगे, उनको जाना है जाना, उन्होंने रोका होगा नहीं जाना नहीं जाना, किसको टिकट बहुत मुश्किल मिला होगा, किसको ऑफिस से छुट्टी बहुत मुश्किल मिली होगी, किसको कैसे किसको कैसे, कोई आता आता छूट गया, कोई का छूटा हुआ बन गया, है ना, ऐसे प्रोग्राम बनता है, आसानी से तो नहीं बनता, मेहनत करनी पड़ती है, तो उस मेहनत का भी पूरा हमको फायदा लेना है इस भट्टी में, ठीक है। तो ये देह से न्यारी अवस्था ही हमें भट्टी में तपने का पूरा अनुभव करा सकती है, बाबा का पूरा करंट फील करा सकती है, बाबा की समीपता का अनुभव करा सकती है, और सारी अवस्थाएं जो भट्टी में हम अभ्यास कराते हैं, फरिश्ता स्वरूप स्थिति, बीज रूप स्थिति, देह से न्यारी अवस्था, रूह रिहान की अवस्था, बाबा के साथ सारे संबंध, दोस्त का संबंध, पिता का संबंध, शिक्षक का, गुरु का, साजन का, ये सब संबंध अनुभव करने का आधार भी देह से न्यारी अवस्था है, हर एक चीज का आधार है ये। इसलिए कल शाम को उद्घाटन होना है, तब तक भी बहुत मार्जिन है, कल दिन में भी एक क्लास रखेंगे आपकी, तो ये अभ्यास हमारा साथ साथ चलता रहे, मिस न हो। फिर भी इस भट्टी से अपने को क्या चाहिए, किस तरह के टॉपिक्स चाहिए, या क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, ऐसा कुछ विशेष हो तो स्लिप्स लिख करके अपने टीचर बहनों को दे सकते हैं, तो उसकी हम व्यवस्था कर देंगे, भट्टी में ध्यान रखेंगे। वैसे तो भट्टी बड़ी परफेक्टली डिजाइन की जाती है, फिर भी किसी की कोई विशेष विषय की आश हो तो वो अपनी आश अपनी टीचर बहनों को बता सकते हैं। तो अभी मैं कैसी दिनचर्या रहेगी आपकी भट्टी के अंदर वो बताती हूँ, कुछ भाई बहने शायद और आने वाले होंगे कल तक। ऐसा है दीदी, ये सब आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं, कल आने वाले हैं। अच्छा, कुछ एक होंगे, थोड़े होंगे जो आने वाले हैं, काफी तो आ गए हैं, थोड़े होंगे जो आने वाले हैं। तो दिनचर्या कैसे रहेगी ओवरऑल वो मैं बताती हूँ। उसके बाद वैसे तो योग चलेगा, पर दीदियों ने अगर भाई बहनों से मिलना, कुछ कहना करना हो, कोई भी तरह के प्रोग्राम की बात, ऐसा है कुछ? ऐसा है कुछ? हाँ जी, 7:30 तक योग चलेगा। अच्छा, दिनचर्या जो ऑफिशियल यहाँ की रहती है, उसके अलावा भी आप लोग अपने पुरुषार्थ के लिए खुद टाइम निकाल सकते हैं। यहाँ ऑफिशियल उठने का टाइम 3:30 बजे है, रिकॉर्ड 3:30 बजता है, लेकिन कोई 2 बजे उठे, 2:30 बजे उठे, 3 बजे उठे, कोई मना नहीं होती। 2 बजे से ही बाबा रूम में, हिस्ट्री हॉल में, शांति स्तंभ में, सब जगह भाई बहने बैठना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, जोश भी हो तो होश भी हो। ज्यादा जग गए और कोई को बीपी हाई की प्रॉब्लम है और उसका बीपी शूट कर गया और वो जोश में घूमता रहे, अपने डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी का प्रयोग कर सकते हैं। जिनको बीपी हाई होने की टेंडेंसी है, तो पहाड़ी पर जब चढ़ते हैं तो बीपी थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ता है पहाड़ी पर आने से, या ऑक्सीजन कंपैरेटिवली नीचे से थोड़ी सी कम होती है, और चेक कराएं, मॉनिटर करते रहे और मेडिसिन कोई भी मिस नहीं करें। कुछ भी जरूरत होती है मेडिसिन के नाम पर तो डिस्पेंसरी अवेलेबल है, वहां पर आप अप्रोच कर सकते हैं। तो उठना 3:30 बजे आप सबके लिए ऑफिशियल योग यहाँ पर ही रहेगा। यहाँ योग 3:30 शुरू हो जाता है, फिर भी कोई 4 बजे तक पहुंचे तो कोई मना नहीं है, पर 4 से लेट कोई नहीं, 4:45 और 4 के अंदर पहुंच जाए। बाकी ऑफिशियली 3:30 बजे से ही यहाँ बहने योग कराने के लिए बैठ जाती हैं। 4:45 बजे तक यहाँ पर योग चलेगा। आगे पीछे कोई थोड़ा बाबा रूम में, झोपड़ी में, शांति स्तंभ पे बैठते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन ऑफिशियल 3:30 से 4:45 आप यहाँ योग करेंगे। फिर 6:30 बजे आपको स्नान आदि करके उसके बाद स्नान के लिए जा सकते हैं। और अमृत वेला कोई बिना स्नान के लिए, स्नान किए भी आ जाते हैं तो कोई हर्जा नहीं है। हाथ मुंह धुलाई करके, बाल वाल ठीक करके, और कोई ड्रेस भी रात वाली चेंज करने चाहे तो करके आ सकते हैं। फिर भी किसी को जरूरी हो पहले स्नान करके आना तो मना नहीं है, पर कंपल्सरी भी नहीं है, पर उसके बाद वाला स्नान जरूर कंपल्सरी है। और फिर कंपल्सरी करके 6:30 बजे तक मुरली के लिए ओम शांति भवन में पहुंचना होता है। वहाँ 7 बजे मुरली शुरू होती है, 7 से 8 मुरली क्लास रहता है। उसके बाद आपको दिनचर्या सुनाई जाती है, क्योंकि मुरली क्लास के बाद बाकी भाई बहने सेवाधारी और मधुबन निवासी वो उठते हैं और भट्टी वाले बैठे रहने होते हैं, तो भट्टी वालों को फिर दिनचर्या सुनाई जाती है। 8 से 9 का टाइम नाश्ते का होता है, और नाश्ते के बाद बहुत करके 9:30 बजे से 10 बजे तक आपको चारों धाम करने होते हैं और बाबा को पत्र लिखना होता है। अब चारों धाम में ये जरूरी नहीं होता है कि आपको जो आधा घंटा का टाइम दिया गया है उस आधा घंटा में आपको जरूरी चारों जगह जाना है, नहीं, किसी एक जगह ही आपकी एकाग्रता अच्छी बन रही है और आप वहाँ बैठे हुए हैं तो कोई हर्जा नहीं है, वहाँ आप बैठे रह सकते हैं। तो वो आपका 9 से 9:30 रहेगा नाश्ते के बाद, और फिर 9:30 से 4 स्थानों पर जा करके 9:45 से आप हॉल में आते हैं, 9:45, 9:45 से 10:30 यहाँ योग रहता है। फिर 10:30 से 11:30 एक क्लास होती है, 11:30 से 12:45 तक फिर ब्रेक होता है, 12:45 से 12 बजे तक फिर से योग रहता है, फिर 12:00 से 1:00 फिर से एक क्लास होता है, ऐसे 2 क्लास होते हैं। और कभी एक क्लास रख करके दूसरा पीरियड पूरा योग का भी रख दिया जाता है, ऐसे भी रखा जाता है। और फिर 1 बजे आपके दोपहर के भोजन का, लंच का टाइम होता है, और 1 बजे भोजन करके फिर 2 से 4 विश्राम के लिए आपको समय दिया जाता है, और शाम को 4 से 4:30 चाय वगैरह लेकर के 4:30 से 5 बजे तक फिर चारों धाम की यात्रा। और यात्रा का अर्थ तो आपको समझाया है, चाहे तो 2 जगह बैठे या 1 ही जगह आधा घंटा आप बैठ गए, कोई हर्जा नहीं है। बारी बारी कभी किधर बैठ गए कभी किधर बैठ गए, ऐसे भी हो सकता है। फिर 5 बजे फिर से शाम को हॉल में आना होता है। ये रोज की दिनचर्या ये वाली सेम रहेगी, तो 5 से 5:30 फिर से संगठित योग, 5:30 से 6:30 क्लास रहता है, 6:30 से 7:30 ऑफिशियल कमेंट्री से योग कराया जाता है। जो स्पीकर क्लास कराते हैं बहुत करके वही बाद में योग कराते हैं। फिर 7:30 से 8 का समय डेली सैर के लिए दिया जाता है। यहाँ सैर करे, बगीचे में करे, थोड़ा रोड पर करे, लेकिन रात्रि के समय लेक तक अंधेरे में न जाएं, इसी रोड पर रहें या बाल उद्यान है, बगीचा है, उसमें कर सकते हैं, बाबा की झोपड़ी के पास कर सकते हैं। और फिर रात्रि का क्लास 8:30 बजे शुरू होता है, जो 8:30 से 9:15 तक योग रहता है, 9:30 से 10:15 तक फिर रात्रि क्लास होता है, जैसे आज भी होगा। आज 7:30 आप सबको छुट्टी मिलेगी, फिर आप 8:30 दोबारा क्लास में वापिस आएंगे, 8:30 से 9:15 तक योग, 9:30 से 10:15 बजे तक सूर्य भाई जी आपको क्लास कराएंगे विशेष, फिर आप 9:30 से 10:00 बजे तक बाबा रूम या झोपड़ी जहाँ भी बाबा को गुड नाइट करते हैं 15 मिनट, और गुड नाइट करके कमरों में जा करके बिना बात किए बिना लेट किए 5 मिनट चार्ट लिख करके साइलेंस में विश्राम करते हैं। ये बहुत ध्यान रहे, आज से ही ध्यान रखेंगे कि कमरों में जाकर के बते अमृत वेला से चाय मिलती है, 3 बजे से बन के तैयार हो जाती है, तो सुबह की शाम की चाय नीचे के डाइनिंग में, और सुबह का नाश्ता, दिन का भोजन, रात्रि का भोजन ऊपर के डाइनिंग हॉल में मिलेगा। ऊपर और नीचे वाली भाषा क्लियर हो गई? अभी तो 1 दिन हो गया आए हुए, तो इसलिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर टाइम कोई भी कहना नहीं पड़े, नीचे वाले डाइनिंग में नहीं जाएंगे। वो मधुबन निवासियों के लिए या गेस्ट के लिए होता है, आप सबकी व्यवस्था ऊपर है, चाय दोनों टाइम की या ब्रेक में अगर कुछ मिलता है तो वो नीचे के डाइनिंग में ही दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है ये सारी बात? कुछ पूछना है इसमें से? बाकी तो कब किसका क्लास है, क्या एक्टिविटी है, वो तो हर दिन की दिनचर्या आपको साथ साथ सुना दिया करेंगे। दिन का स्वमान, दिन का संबंध, कोई लिखने का काम जो भी होगा वो तो आपको हर दिन सुबह मुरली के बाद सुनाया जाएगा। तो अभी बाबा की याद में चलेंगे। कुछ पूछना है इसमें से किसी को? क्लियर है? क्लियर सारा? दीदी आएंगी योग कराने के लिए या बीच में भी आ जाए? अभी बाबा की याद में चलेंगे, 7:30 तक विशेष याद में बैठेंगे।